Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan, Brahma Chakra Kanudhyan. श्वेताश्वतर उपनिषद के आधार पर हम सब कर रहे हैं। ब्रह्मचक्र माने जो ब्रह्म को पहचाना, ब्रह्म को जिन्होंने जाना, उस ध्यान योग के द्वारा उन ऋषियों ने जिस प्रकार से ब्रह्म अस्तित्व को निरुपाधिक रूप से भी अनुभव किया और सोपाधिक रूप से भी जिस प्रकार से अनुभव किया, उसी का वर्णन व्याख्यान इस चतुर्थ मंत्र के द्वारा कर रहे हैं। पर अद्वितीय वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वो सोपाधिक स्वगुण साकार रूप में भी विद्यमान है, वही निरुपाधिक केवल मात्र चैतन्य रूप से भी विद्यमान है। और यही इस श्वेताश्वत उपनिषद के द्वारा हम लोगों ने जाना, विचार कर रहे हैं। चक्र मतलब है चक्का। जिस प्रकार जलाशय में भंवर होते हैं ना, जल में रह करके भी, जल से अलग होकर के भी वो दिखता है भंवर, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और उसी में एक अलग चक्र भी, यही है ब्रह्मचक्र। सर्वत्र जल है और फिर भी कहीं कहीं दिखता है कि अरे ये यहां जल जो है बड़ा घूम रहा है और उसमें कुछ भी डालिए तो वो सीधा, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म अस्तित्व, ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, फिर भी उसी अस्तित्व में एक चक्र जो है घूम रहा है और उस चक्र में जो पड़ता है महाराज, उसका तो पारावार हो जाता है, चाहे इधर चाहे उधर, कुधर किधर भी जाइए तो ये है। और साधक साधना करते हैं, जो जान लेता है, जिसको समझ है कि यहां जो है पानी खतरनाक है, घूम रहा है चक्र आकार से, उससे वो छूट करके अलग होकर के अन्यत्र विचरण करता है। ठीक उसी प्रकार जो साधक है, जो साधना के द्वारा दो अस्तित्व को पहचाना कि यह चक्र है और इस चक्र से अलग भी वो अस्तित्व है जहां शांति शीतलता, वो चक्र से दूर होकर के, चक्र से बाहर निकलने के लिए साधना के द्वारा वो निकल जाता है। और जो लोग साधना कर रहे हैं, चक्र में रह करके चक्र से निकलने के बात सोचते हैं, तो वो भी कभी कभी जो है उस भंवर से जो है अलग हो जाता है, परंतु संस्कार और कर्म उसके कारण पुनः वो खींच करके उस चक्र में आते हैं। परंतु यह भी खेचातानी करते करते एक समय साधना के बल पर वो भी निकल जाता है। इसलिए भगवत भक्तजन वो जो चतुर्थ मंत्र है, इसमें उसी चक्र को दिखा रहे कि देखो यही चक्र का कभी भी स्थिरता नहीं है। और जब तक हम उस चक्र में पड़े रहते हैं, अगर हम लाख कोशिश करें तो स्थिर नहीं बन सकते ना हो सकते। चक्र से संसार चक्र, काल चक्र, किसी भी चक्र में है तो उस चक्र से बाहर निकले तो जाकर स्थिरता। इसीलिए देखिएगा चक्र शब्द हम व्यवहार में बहुत प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मूल में एक चक्र है ना, तो वो हमारी समझ में है। काल चक्र, मास चक्र, पक्ष चक्र, क्या क्या चक्र हम लोग, और वो चक्र चक्र करते करते अपने को ही चक्कर में डाल दिया। तो उस चक्कर से निकलने के लिए शास्त्रीय उपनिषद के ये जो दिखा रहे, इसका मेन उद्देश्य यह है कि समझ करके साधक के जीवन में इस संसार से एक वैराग्य उत्पन्न हो कि भाई यही है क्या जीवन, कि इससे भी कुछ बेहतर और कुछ है। तो जिनके जीवन में वो जिज्ञासा है, फिर तो वो निकलने के लिए साधना प्रयत्न चेष्टा करते रहते हैं। तो इसीलिए ये चक्र पढ़ते समय मन में, अगर मेरे मन में आया था इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोगों के मन में नहीं भी आ सकता है, बुरा मत मानिएगा। मेरे मन में पहले आया था कि ये फालतू क्यों पढ़ रहा है, ये चक्र मकर क्यों, मेरे मन में तो पहले आया था। और इसको लेकर के काशी में हमने काफी बीएचयू में विरोध किया कि इसको पढ़ाने का, कि इसमें इतने दिन रटने का, लगाने का क्या अर्थ है। चार चार पांच पांच लेक्चर दिए, पांच दिन तक एक श्लोक के ऊपर, उसमें पता नहीं लगा था। फिर बाद में जब गुरुजी के पास आए सन्यास किसी गुरु के पास, फिर तो पता लगा कि इसका मूल, क्यों कई बार जो है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में लेक्चरर जो होते उनको उतना गहनता से वो विचार नहीं करते ना, तो वो केवल जितना है उसके ऊपर चार लेक्चर दिए तो अपने को बड़ा कृतकृत्यार्थ मान गए कि हमने चार लेक्चर। फिर बाद में जब इसको ये पढ़ा, फिर विद्या गुरु सन्यासी थे उनसे जब विचार हुआ कि इसके क्या उपयोगिता है, इसके चक्र को दिखाने के, हम लोग तो पढ़े ही हैं भाई, भाई चक्र में पड़े हो परंतु चक्र के ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो तो फिर उसमें ध्यान जाएगा, और ध्यान हो तो फिर तुम उससे निकलने के लिए प्रयत्न करो। एकमात्र वैराग्य संपादनार्थ इदम, इतना अच्छा लगा, और कल या परसों आप उसी बात को दोहराए। इसीलिए एकदम कई बार लगता है कि ब्रह्म के बारे में बोलना चाहिए, बताना चाहिए, उपनिषद की विद्या है, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, ये सब क्या है भाई। ब्रह्म तत्व को तब आप चिंतन कर सकते हैं जब इधर से थोड़ा सा अटैचमेंट, आसक्ति कम हो, हटे। यही इसी यही मुख्य है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंतम अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। अस्मिन कितना सुंदर, सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते, सर्वत्र वो है, और जो हंस होते हैं महाराज वो तो इस जल में ही, चक्र में ही घूमते, परंतु जो परमहंस होते हैं वो इस चक्र से, तो इसलिए हंस बन करके नहीं, परमहंस बनना है हम सबको। और यही चक्र, इसीलिए ब्रह्म चक्र का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रथम अध्याय श्वेतश्वतर उपनिषद के चतुर्थ मंत्र का उच्चारण करते हैं। तमेकनेमिं त्रिवितं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः षड्वीर्विश्वरूपैकपाशम् त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। तम वो जो परमात्मा शक्ति एकनेमिम, अब भाष्य को देखिए कहां तक पहुंचे थे। हाँ, अब कहां तक हो गया था, विपर्जय भेदा, ये तो हो गया था। हाँ, तो इतना तो पता हम लोगों को लगा कि तामिश्र 18 प्रकार है और अंधतामिश्र भी उसी प्रकार है। परंतु अंतिम कल जहां हम लोगों ने छोड़ा वो बहुत ही सुंदर एक प्रेरणास्पद है कि भाई जितने भी भोग्य वस्तु है, जितने भी ऐश्वर्य है, जो भी मन में चाह है, भोगने की इच्छा हो, अगर जीवन रहते हुए आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, तो ठीक है। और उपभोग के द्वारा अगर चित्त प्रशांत हो जाए तो भी ठीक है। नहीं तो अगर एक आकांक्षा मन में चाह रह जाए तो वो चाह, वो आकांक्षा जो है पुनः खींच के ले आते हैं। ऐसे तो ऋषियों के अनुभव है कि हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। अग्नि में घी डालने पर अग्नि निर्वापित होती है कि प्रज्वलित होते हैं? प्रज्वलित। इसीलिए मन में अगर ऐसा है कि भोग के द्वारा ही हम जो है शांत हो सकते हैं, तो ऋषि कह रहे ना न जातु कामहा कामानाम उपभोगे न साम्यति। कामनाओं को, काम को उपभोग के द्वारा तुम शांत नहीं कर सकते। अगर तीव्र इच्छा है तो भोगे, इसका इससे आपने एक संस्कार मन में दिया और वो संस्कार कभी भी जागृत नहीं होगा, ऐसा बात। हाँ, साधक की साधना है, आप कर सकते। मन से अगर उस भोग के प्रति तीव्र वैराग्य स्थिर कर लेते हैं, इसीलिए तो पंचदशी ग्रंथ में विद्यारण्य स्वामी ने लिखते कि पुनर्भोगे स्वदीनता। वैराग्य को प्रतिष्ठित अगर आप करना चाहते हैं तो पुनर्भोगेशु अदीनता, पुनः शब्द प्रयोग किया, अर्थात एक बार आपने भोग कर लिया तो उसके संस्कार आपको बार बार जो है उसी को जगाता रहेगा और उसी में प्रेरित करता रहेगा। तो ये व्यक्ति जो दीन हो जाते हैं, कितने भी ऐश्वर्य, कितने भी समृद्ध, क्या भी ताकत क्यों ना हो, अगर एक बार उसमें आसक्त मना, आसक्त चित्त चेत पुनर्भोगेशु दीनता, और वो भोग के लिए महाराज एकदम दीनहीन बन करके वो रहते हैं। तो इसीलिए वैराग्य अगर ये है तो बिल्कुल इस प्रकार से मन से उसको, उसकी सत्यता, उसकी पर्यालोचना, विवेक के द्वारा उसको पूर्ण रूप से काट डालिए कि उसके संस्कार भी न बच पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ये यहां लिखते हैं भोग्यत्वेन उपस्थित अर्ध भोक्तेषु मृत्युना हिरण। और महाराज भोग करते करते हम लोगों का यही दशा है, ये जो अंतिम जो लिखा है ये इसी में हम पड़े रहते हैं, अतृप्त होकर के जाते हैं। तो जाते हैं मतलब क्या, जाते नहीं है, आने के लिए थोड़ा व्यवस्था भी कर बिल्कुल यही करते हैं ना कि हम जो कोई दायित्व, कोई किसी को हम दोष नहीं दे सकते कि हम पुनः क्यों आए, आना नहीं चाहिए। भाई हमने ऐसा ही कर्म किया तो हमको आना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मन में तीव्र इच्छा है तो कर ले, अगर है नहीं हो पा रहा तो मन से उसको दूर कर दे, करने के प्रयत्न करें। कई बार ऐसा होता है ना, असमर्थ है, शरीर से लाचार है, तो मन चाह रहा है, तो बस अगर आप समझ में आ रहा है आपको कि मन से नहीं, अब शरीर से संभव नहीं है और ऐसा कोई साधन उपयोग कुछ भी नहीं है, तो फिर मन से उसको अंदर से निषेध करके उसको दूर कर दीजिए। नहीं तो महाराज यही संस्कार, ये जो आकर्षण, उसको पुनः ले आते हैं। बिल्कुल सजग कर दिया इसको। वो एक स्वामी जी के मन में आया, वो प्रणव जी सुना रहे थे कि यही आया होगा बॉम्बे में और आप लोग के घरों में कड़ी मिला होगा बाबा को, और कड़ी पिए तो अच्छा लगा तो वो आप वहां गए केदारनाथ में तपस्या करने, वहां जाकर के उनके कड़ी के संस्कार जग गया। अला हा हा, अगर कड़ी मिल जाता तो कितना अच्छा होता, आप बताइए। कब पिया कड़ी और वहां जाकर के संस्कार कितने दिन बाद जो है, अब उनके मन में वो कड़ी की जो प्यासा है, चाह है, एकदम स्थिर होने ही ना दे, साधना में लगने ही ना दे, तो क्या किए, नीचे आए साधक से आकर के किसी के घर में गया और कड़ी मांगा तो बोला आप पी। अब कैसे पीते पीते गए, देते गए, वो पीते गए, बोला अभी पी, मन को बोला कितना तेरे को चाहिए पी, दोबारा कभी बोलना है। अब जब कड़ी पी पी करके तो उल्टी करने लगे तब भी पी रहे, पियो मन को। और ये जो शिक्षा है कि ऐसे उन्होंने ये किया कि आप दोबारा कड़ी के प्रति कभी वो दृष्टि और नाम भी नहीं लेगा, तो ऐसा कर सकते, और नहीं तो उसके दोष दृष्टि के द्वारा, दोष दर्शन के द्वारा उस भोग्य के प्रति, भोग के प्रति वैराग्य को प्रतिष्ठित करे। कई बार हम लोग चाहते हैं मन बहुत कुछ मिलता नहीं है और मन ही में हम कष्ट पाते हैं, तड़पते हैं, तो उससे अगर आप वैराग्य दर्शन करते हैं कि इस ये अगर मिलता तो ये होता, सब नेगेटिव अगर आप सोच कर सकते हैं, ला सकते हैं, तो उस बारे में भी आप वैराग्य को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अच्छा, अब भाष्य को देखिए। विपर्जय भेदा व्याख्याता, यहां तक जो है विपर्जय का भेद व्याख्यान कर दिया। विपर्जय कितना है, पंच विपर्जय, पांच प्रकार के विपर्जय है, पांचों का व्याख्यान हम लोगों ने प्राप्त किया। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। अब क्या कह रहे देखिए, असक्तिर अष्टा विंशति विंशतिधा उच्यते। अशक्तिर अष्टा विंशतिधा उच्यते। अशक्ति जो है ना, विपर्जय के बाद आया अशक्ति। देखिए, सतार्धारम पंचाशत प्रत्यय भेदा, वो जो अरे है वो पचास है, उसमें से पहला जो है विपर्जय था, विपर्जय के पांच भेद और पूरा डिटेल्स हम लोगों ने जाना, उसके बाद है अशक्ति। अशक्ति कितने प्रकार के हैं, अट्ठाईस प्रकार के, अष्टाविंशतिधा। तो अट्ठाईस प्रकार के जो अशक्ति है वो क्या है बतला रहे, एकादशेन्द्रियाणाम, अशक्तयोः मूकत्व बधिरत्व अंधत्व प्रभृतयोः बाह्या। हाँ, एकादश इंद्रियों की जो आसक्ति है, देखिए यहाँ कितना अच्छा एक दर्शन दे रहे हैं कि एकादश इंद्रियाणाम अशक्तयो, ये इंद्रियों के बल पर हम क्या क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ये इंद्रियों भी आसक्ति है, इंद्रिय भी असमर्थ है, उसको पहचानना चाहिए। तो यही बता रहे भाई, इस इंद्रियों में भी एक लिमिटेशंस है, अवधि है, सीमा है, अवसान है, उसको पहचानो। इसीलिए अंधत्व, मुकत्व, बधिरत्व, ये सब जो है आसक्ति है। इंद्रियों में पूर्ण शक्ति है क्या, कि जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रियां हैं, इसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, तो महाराज वो शक्ति अगर न हो तो आपके आंख कितना भी बढ़िया हो, कितने बड़े हम लोग, कितने ये सब पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कैसा लाचार, देखिए बिल्कुल कोई कुछ सामर्थ्य नाम की कुछ भी चीज नहीं है। अगर वो शक्ति, वो परमात्मा, वो परब्रह्म यहां अगर इस, ये तो मान लीजिए एक सेंटर है महाराज, हेड ऑफिस, और ये सब दफ्तर है। अब वो आकर के इस दफ्तर से अलग अलग काम किया और जाकर के मन में जाकर के बैठ गए, सो गए, विश्राम लिया, और फिर आया महाराज, आंखों से देखा, कान से सुना, मुंह से बोला, हाथ पैरों से सब काम किया दफ्तर में, फिर जाकर के टायर्ड होकर के सो जाते हैं। तो उस जो शक्ति है उसको समझे, और ये सब अशक्ति है, शक्तिहीन है, उसको समझ करके उस शक्ति घर के पास चले। इसीलिए यहां दिखा रहे कि भाई दशेन्द्रियाना एकादशेन्द्रियानाम मूकत्व बधिरत्व अंधत्व प्रभृतयो हो बाह्य, ये सब बाह्य है, और मन भी महाराज असमर्थ है।